नमस्ते। शिक्षा पर प्रेरक और मार्ग प्रशस्त करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजुकेशन विजन में आपका स्वागत है। आज हम पीआईएसए में देशों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नीतियों पर यूरोपीय संघ आयोग की एक रिपोर्ट पेश करेंगे। ये किस बारे में है?
हर 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम तथाकथित पीआईएसए गणित, पढ़ने और विज्ञान में 15 वर्षीय विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मामले में देशों की रैंकिंग जारी करता है। कुछ क्षेत्र या देश जैसे उदाहरण के लिए शंघाई, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, एस्टोनिया या फिनलैंड समय के साथ शीर्ष स्थानों पर एकाधिकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि अन्य लगभग 100 देशों में से अधिकांश के लिए जो पीआईएसए में भाग लेते थे, प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रयास करना एक वास्तविक चुनौती है। यूरोपीय संघ इस चुनौती से विशेष रूप से चिंतित है। 2019 में प्रकाशित यूरोपीय आयोग के एक अनुमान के अनुसार लगभग 23% यूरोपीय संघ के छात्र पीसा मूल्यांकन में स्तर 2 तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बुनियादी गणित, विज्ञान और पढ़ने के कार्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, जैसा कि पीआईएसए रैंकिंग से पता चलता है, 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में से केवल 7 अर्थात बेल्जियम, एस्टोनिया, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड और स्वीडन गणित, विज्ञान या पढ़ने में कम एक बार शीर्ष 10 में स्थान पर रहे हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए यूरोपीय आयोग ने हाल ही में पीपीएमआई सार्वजनिक नीति और प्रबंधन संस्थान विनियस लिथुआनिया में एक शोध संस्थान को एक अध्ययन जनादेश दिया। यह अध्ययन पीपीएमआई की सुश्री हन्ना सियारोवा, सुश्री रेडविले बैंकोस्काइटे और सुश्री कात्या दुनाजेवा द्वारा किया गया था और लीज विश्वविद्यालय बेल्जियम से प्रोफेसर डोमिनिक लाफोंटेन, प्रोफेसर एरियन बे, डॉ वैलेरी क्विट्रे और मिस्टर फैबियन प्रेसिया। अध्ययन के परिणाम 2022 में प्रकाशित किए गए थे। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि कैसे कोई देश नीतियों को लागू करके पीआईएसए में अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकता है। इसमें 2009 से 2018 की अवधि शामिल है और इसलिए इसमें 4 पीआईएसए चक्र शामिल हैं। विश्लेषण के लिए 7 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों का चयन किया गया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और स्वीडन।
विशेष रूप से ये 7 देश क्यों?
देशों का चयन करने के लिए मानदंड लागू किए गए थे। सबसे पहले देश ने 3 क्षेत्रों में से कम एक में अपने पीआईएसए प्रदर्शन में सुधार दिखाया होगा, अर्थात या तो पढ़ना, विज्ञान या गणित। लेकिन दूसरा, पीआईएसए के प्रदर्शन में सुधार सामाजिक इक्विटी की कीमत पर नहीं आना चाहिए। यह उच्चतम प्रदर्शन करने वाले छात्रों या सामाजिक आर्थिक रूप से लाभान्वित पृष्ठभूमि के छात्रों पर शैक्षिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है जो पीआईएसए प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विद्यार्थियों की श्रेणियों के बीच उपलब्धि अंतर स्थिर या कम होना चाहिए। चयनित देश वे थे जो इन मानदंडों को पूरा करते थे। ये देश तथाकथित पीआईएसए की सफलता की कहानियां हैं।
क्या अध्ययन निर्णायक था?
2 मामलों में स्पष्ट और उत्साहजनक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 1 बुल्गारिया में प्रीस्कूल शिक्षा को बढ़ाने के बारे में है और दूसरा पुर्तगाल में ग्रेड पुनरावृत्ति को कम करने से संबंधित है।
तो पहले कैसे बल्गेरियाई मामले के बारे में?
बुल्गारिया में 2000 और 2015 के बीच कई शैक्षिक सुधार किए गए हैं। इनमें से प्रीस्कूल शिक्षा के सुधार का देश के पीआईएसए प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2000 में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय की तत्परता के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को पेश किया गया था। ये मानक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं जो बच्चों को बचपन की शिक्षा के दौरान प्राप्त करने की उम्मीद है। 2002 में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने से कम एक वर्ष के लिए प्रीस्कूल शिक्षा में बच्चों को नामांकित करना अनिवार्य हो गया। अनिवार्य 2 साल की प्रीस्कूल शिक्षा 2010 में शुरू की गई थी। 2020 में 4 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रीस्कूल शिक्षा अनिवार्य हो गई। संपूर्ण सुधार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय आकलन के निष्कर्षों पर आधारित है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है। सुधार के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट के लेखकों ने सांख्यिकीय उपकरण, विशेष रूप से रेखीय प्रतिगमन मॉडल का उपयोग किया। उन्होंने प्रायोगिक विश्लेषण भी किया, जहां प्रवृत्ति स्कोर मिलान तकनीक सांख्यिकीय जुड़वा की पहचान करने की अनुमति देती है। ये सांख्यिकीय जुड़वा तब एक नियंत्रण समूह और एक प्रायोगिक समूह बनाने के लिए काम करते हैं, जिनका उपयोग तुलना उद्देश्यों के लिए किया जाता है। परिणाम बताते हैं कि 2012 PISA चक्र की शुरुआत में अनिवार्य प्रीस्कूल सुधार से गुजरने वाले बच्चों के पहले समूह ने गणित और पढ़ने में काफी बेहतर प्रदर्शन हासिल किया।
और पुर्तगाल में?
पुर्तगाल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में एक ग्रेड को दोहराना आम है। 2018 में 25% से अधिक विद्यार्थियों को यूरोपीय संघ के औसत 10% की तुलना में एक वर्ष दोहराना पड़ा। फिर भी, जैसा कि प्रोफेसर ब्रोफी ने 2006 में प्रकाशित पुनरावृत्ति पर अपनी पुस्तक में बताया, 90 के दशक के बाद से अंतर्राष्ट्रीय शोध साहित्य एक वर्ष को दोहराने के अनुत्पादक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। अन्य चिंताओं के बीच एक बढ़ा हुआ जोखिम है कि रिपीटर्स विफल हो जाएंगे और वे स्कूल छोड़ देंगे। पुनरावृत्ति कक्षाओं के आकार को भी बढ़ाती है और कक्षा प्रबंधन के साथ समस्याओं की ओर ले जाती है। 2010 के दशक में ग्रेड पुनरावृत्ति को कम करने के लिए पुर्तगाल में भी प्रोत्साहित किया गया था, विशेष रूप से न केवल शैक्षिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से। यह कार्यक्रम, जिसे PNPSA कार्यक्रम भी कहा जाता है, 2016 में शुरू किया गया था। यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट PISA प्रदर्शन पर ग्रेड पुनरावृत्ति को कम करने के प्रभाव का विश्लेषण करती है। शोध दल ने 2009 और 2018 में PISA में भाग लेने वालों में सांख्यिकीय रूप से समान विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति स्कोर मिलान तकनीकों का उपयोग किया। इस प्रकार नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों के संबंधित प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। परिणाम उन विद्यार्थियों के बीच बेहतर पठन प्रदर्शन दिखाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति कम करने वाली नीतियों के कारण 2018 में एक ग्रेड दोहराना नहीं पड़ा था, लेकिन 2009 में दोहराना पड़ा होगा।
अंत में, ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है?
अन्य देशों और इस अवधि में किए गए अन्य शैक्षिक सुधारों की भी जांच की गई। हालांकि कई मामलों में स्पष्ट और अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। रिपोर्ट के लेखक रेखांकित करते हैं कि इन नीतियों के प्रभाव का कड़ाई से मूल्यांकन करना कितना कठिन रहा है। इसका एक मुख्य कारण अनुदैर्ध्य डेटा की कमी है, जो समय के साथ विद्यार्थियों के विकास और नीतिगत प्रभाव की निगरानी करने की अनुमति देगा। नीतियों के संबंधित प्रभावों को अलग करना एक अतिरिक्त चुनौती साबित हुई, क्योंकि सरकारें अलग अलग नीतियों को लॉन्च करती हैं जो अतिव्यापी लक्ष्य समूहों, जैसे कम प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनके शासनादेश समय के भीतर संबोधित करती हैं। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद यह रिपोर्ट बताती है कि अन्य देशों में इसी तरह के विश्लेषण कैसे किए जा सकते हैं और यहां तक कि उपयुक्त के रूप में प्रासंगिक गुणात्मक दृष्टिकोणों को जुटाना भी। रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के विश्लेषण देशों को अपने PISA प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपने एपिसोड का आनंद लिया होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।